ओम शांति। आप सबकी प्यारी, सबको माँ के समान पालना देने वाली, अभी अभी हमने देखा आप कितना प्यार से आपकी दीदी जी का आप शुक्राना कर रहे थे, है ना? तो ऐसे आदरणीय सतीश दीदी जी सादगी की मूरत, धारणा मूरत, बाल्यकाल से आप ज्ञान में हैं, 50 वर्षों से आप संपूर्ण समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने लौकिक पढ़ाई में भी मास्टर डिग्री ली है। उस समय उच्च पदों की नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा कर आपने ईश्वरीय सेवा को प्राथमिकता दी। आप मदर टेरेसा तथा महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित है, इसलिए आपके जीवन में सादा जीवन उच्च विचार रहा। वर्तमान समय विकासपुरी दिल्ली से जुड़े हुए अनेक सेवा केंद्र नजफगढ़, जय विहार तथा 65 गीता पाठशालाओं का आप सफल संचालन कर रहे हैं। आप ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स विंग के दिल्ली जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने अनेक गांव, स्कूल, कॉलेज, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि अनेक समाज सेवी संस्थाओं में जाकर ईश्वरीय संदेश दिया है। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से आपको सम्मानित किया गया। रेलवे मिनिस्ट्री, दिल्ली मेट्रो, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनके ट्रेनिंग सेंटर में अनेक वीआईपीज को आपने बावक बनाया है। पूर्व में रेलवे मिनिस्टर श्री आर वेल्यू को आप मधुबन लाने के निमित्त बने। आपके द्वारा ट्रांसपोर्ट विंग की ओर से हर वर्ष ओआरसी दिल्ली में सेमिनार आयोजित होते हैं। तो ऐसे हमारी प्यारी सतीश दीदी जी का हम सभी और आदरणीय दीदी जी का हम विशेष अनुभव युक्त क्लास सुनते हैं।
दो तीन दिन से हम अपने बहनों की, भाइयों की क्लासेस सुन रहे हैं। ये क्लासेस दिल को छूने वाली हैं, जीवन को परिवर्तन करने वाली है। और सचमुच में आप जब अपने अपने स्थानों पर जाएंगे, आपके जीवन को बदला हुआ देख करके उनको लगेगा ऐसी कौन सी भट्टी हुई है जिनके संस्कार बहुत दिव्य बन गए हैं, श्रेष्ठ बन गए हैं। ये वास्तव में ये भट्टी जो है हमारे संस्कारों को, हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली है। और मैं तो मन मन में सोच रही थी कि हमारी आज सरिता बहन की जब हम क्लास सुन रहे थे, मुझे लगता है जो 63 जन्मों के पाप हैं, शायद ऐसा करते रहेंगे तो मिटे जाएंगे और जीवन जो है महक जाएगा, खुशबूदार बन जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि कितनी धारणा युक्त क्लासेस और कितने सरल ढंग से बताई जा रही थी, जिसमें कोई किसी को करना मुश्किल नहीं है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कितनी सुंदर क्लासेस हम सबको मिली। और ये ऐसी खुशबू आप अपने स्थानों पर जाकर के फैलाएंगे, और वो ये खुशबू, वो गुलाब के फूल की खुशबू, गेंदे के फूल की खुशबू थोड़े स्थान पर ही हमको खुशबू देते हैं, पर चैतन्य फूलों की खुशबू कितनी दूर दूर तक जाएगी। जहां भी जाएंगे, जिसके संपर्क में जाएंगे, ये गुणों की खुशबू उनको भी गुणवान बना देगी। ऐसी मेरी आप लोगों के प्रति शुभकामना है। तो मैं अभी अपने जीवन का परिचय देती हूँ कि मेरा जीवन जो था, एक जिस परिवार में हुआ वो धार्मिक परिवार था, शिक्षित परिवार था, धनाढ्य परिवार था। और हमारे यहाँ बचपन में हमने देखा, क्योंकि 80 का परिवार हमारा संयुक्त परिवार था, उसमें साधु संत महात्मा 12 महीने हमारे घरों में रहते थे। और ये रामायण है, भागवत है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो उनकी चर्चाएं हमारे परिवार में, घर में चलती रहती थी। और मैं जब छोटी थी तो एक साध्वी हमारे घर में रहती थी, 4 साल की एज थी मेरी, तो तो मैं वो बगीचे में घूमने के लिए जाती थी। मुझे साधुओं के साथ, महात्माओं के साथ, साध्वी के साथ बाल्यकाल से बड़ा अच्छा लगता था। मेरा मतलब इतनी उनकी पवित्रता होती थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। तो एक बारी की बात है, मैं पहली क्लास में जब पढ़ती थी तो मेरे दादाजी नंबरदार थे, तो उनकी मीटिंग चल रही थी जिसमें सभी प्रधान थे। तो उसमें मैं जैसे स्कूल से आई तो मैं अपने दादाजी के बगल में बैठ गई। तो वहां पर एक पास के शहर से एक महात्मा जी आए हुए थे, 32 साल उनकी एज थी। तो मुझे देखते ही कहा, ये बच्ची शादी नहीं करेगी, ये बच्ची शादी नहीं करेगी। और सचमुच में मेरे जीवन में कभी मुझे संकल्प भी नहीं आया शादी होती क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब मैं, मुझे याद है मैं पहली बार बाबा को मिली तो प्रकाशमणि दादी जी और हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी जी बैठे हुए थे। तो बाबा ने उनको कहा, ये बच्ची 7 जन्मों से बाल ब्रह्मचारी है और निर्मल है, शुद्ध है 7 जन्म से। और मुझे सचमुच में ऐसा लगता है कि मुझे जीवन में कोई चीज आकर्षित नहीं कर सकी। हम कॉलेज में भी गए, कभी मुझे नहीं याद कि मैं कभी थिएटर में गई या मैंने टीवी पर फिल्म देखी हो, मुझे नहीं लगता। मुझे बाल्यकाल से ये मदर टेरेसा है बहुत इम्प्रेसिव थी। मैं सोचती थी मैं बनूं, मैं चाहे ब्रह्मा कुमारी ना भी बनती तो मेरे मन में था मैं मदर टेरेसा जैसी बनूं। क्यों? उनमें जो सेवा का संस्कार था वो कूट कूट करके भरा हुआ था। इस बात का मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा कि एक बार एक मदर टेरेसा जा रही थी तो डस्टबिन में एक बच्चा की आवाज आ रही थी, चिल्ला रहा था, छोटा सा बच्चा, डस्टबिन में किसी ने फेंक दिया होगा और चूहों ने उसको काटा हुआ था। और मदर टेरेसा ने उस डस्टबिन में से उसको निकाल करके, उसको साफ करके, मरम पट्टी करके उसको ठीक किया। तो ये बात मुझे लगी, इस मदर टेरेसा ने जीए दान दिया है। देखो, जिस माँ ने जन्म दिया वो उसको डस्टबिन में फेंक करके चली गई। और ये असली माँ तो ये है कि ऐसे बच्चे को जिसको चूहों ने कितनी जगह से कुतर करके रखा हुआ था उसकी मरम पट्टी करके उसको ठीक कर दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये मैं बहुत प्रभावित थी। जितने भी महान लोग थे, मुझे बचपन में इधर उधर की बातें पसंद नहीं थी, न सुनना पसंद थी न करना पसंद थी। महान लोगों की जो कहानियां थी, हमारे परिवार के अंदर इन विषयों पर बड़ी चर्चा होती थी, उसकी मेरे ऊपर अमिट छाप होती थी कि जिनका जीवन संघर्ष का होता है मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोचती थी, जो इतनी बाल्यकाल से मेरे मन में विचार चलते थे, मैं ऐसा आश्रम बनाऊंगी जो असहाय लोग हैं, अनाथ लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, मैं ऐसे लोगों की सेवा करूंगी जिनको ठुकराया जाता है। तो ऐसे मेरे मन के अंदर ख्याल चलते थे। तो कई बार हमने देखा ये मन में बहुत रहता था। तो क्या हुआ, एक जो हमारे लौकिक में बड़े भाई थे, हमारे रामनाथ भाई जी, वो बाबा के टाइम के बच्चे थे। तो मैं जब सेकंड क्लास में थी तो मैंने जब उनकी ये ज्ञान की चर्चा कर रहे थे परिवार के अंदर, तो मैं सुन रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी ये बातें लगी। तो वो आर्मी के अंदर सर्विस करते थे 1962, और ये पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उनको 2 अवार्ड भी उसके अंदर उनको प्राप्त हुए थे। तो क्या हुआ, जब वो जम्मू कश्मीर में थे तो जब उनको, एक हमारी गोपी दादी थी जम्मू के अंदर और मद्रास के अंदर, रोजी बहन के साथ एक और बहन थी, तो उन्होंने भाई साहब को कहा कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक बहन आती है। तो वो काफी समय हो गया उनके पति की कोई सूचना नहीं मिल रही है, तो आप उनसे बात करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं? भाई साहब ने कहा जरूर करवा सकता हूँ। जब करवाई तो बहन ने थैंक्स किया भाई साहब को और कहा कि कल ना रक्षाबंधन है, उनको निमंत्रण दिया, आप जरूर आना। तो वहाँ उन्होंने कहा वहाँ क्या होता है, कहते हैं भगवान की मुरली सुनाई जाती है। भाई साहब ने कहा क्या, कहा भगवान की मुरली सुनाई जाती है, भगवान की सचमुच में भगवान की मुरली सुनाई जाती है, कहती हाँ सुनाई जाती है। तो रक्षाबंधन का दिन था, तो सुबह सुबह नहा करके बोला जो बहनों की राखी आई हुई मैंने वो नहीं बांधनी, मैंने जो भगवान की मुरली है ना वो जरूर सुननी है। जब आश्रम में गए तो बहनें तो उस समय ध्यान में जाती थी, वो राखी बांधने में लगी हुई थी, इधर देखा उधर देखा भगवान की मुरली, कौन सी भगवान की मुरली चल रही है। तो फिर पूछा भाई साहब ने, बहन जी भगवान की मुरली, मैं तो मुरली सुनने के लिए आया हूँ, यहाँ कौन सी मुरली चल रही है। फिर उन्होंने उनको बैठ कर के जब समझाया, पहले दिन उनको ये आभास हो गया कि श्री कृष्ण का जब आया ना, कहते मैं भी था उसके साथ, मैं भी था उसके साथ, मैं तो इनके साथ ही था, पहले दिन उनको निश्चय हो गया। और उस समय संदेशी को बाबा ने संदेश दिया, ये जो बच्चा आया है इसको बाबा के घर से एक रजाई, तुलाई और तकिया दिया जाए। तो संदेशी को जैसे ही ये संदेश मिला तो उन्होंने भाई साहब को एक रजाई, तुलाई और तकिया दिया। और भाई साहब को फर्स्ट डे से, जैसे कोई विद्यार्थी आते हैं कई साल लग जाते हैं बाबा के घर के प्रति क्या देना है क्या लेना है, तो उनको बहन को सिंपल देख के इनके मन में आया बहने क्या खाती होंगी, कुछ लगता तो है नहीं। तो एक रेड़ा पूरा सामान का भरवा करके, जिसमें तेल घी चीनी मसाले सब, कोई बोला भी नहीं है किसी ने, तो कैसे बाबा अपना कार्य कराता है। फिर उसके बाद जो विजयलक्ष्मी बहन थी उन्होंने कहा आबू में भगवान आते हैं, और भाई साहब को तो बहुत तलाश थी कि भगवान को मिलने के लिए। तो अब उन दिनों में उन्होंने कहा आप जाइए और मैं वहां मिलूंगी आपको, आबू में ही मिलूंगी। अब वो तो उन दिनों में आबू तो छोटा सा था, गांव गांवड़ा था, मेरे देखते देखते मैंने देखा कुछ भी नहीं था। तो जब वो आबू में आए, पूछा कहाँ कहाँ ये स्थान है, तो काफी ढूंढने के बाद पता चला। तो जब वो गेट पर आए, शाम का टाइम था और उनकी टीचर तो आई नहीं थी, तो गेट पर पूछा गया आप चिट्ठी लाए हो। भाई साहब ने कहा मैं चिट्ठी तो नहीं लाया हूँ, पर मैं सेमी चिट्ठी हूँ। भाई तुम चिट्ठी टीचर की नहीं लाए, अंदर ऐसे कोई अलाव नहीं करेंगे। तो भाई साहब ने कहा क्या बाप को मिलने के लिए भी चिट्ठी चाहिए, मैं ही चिट्ठी हूँ ना, आप बाबा को बोल देना। और बड़ी दीदी आई थी तो उसने पूछा छोकरे उठा तो कोई चिट्ठी नहीं लाया। कहते दीदी मैं तो, मेरी टीचर ने आना था वो तो आई नहीं है किसी कारणवश, पर मैं ही तो चिट्ठी हूँ, मुझे भगवान को मिलने के लिए, मेरे बाप को मिलने के लिए कोई चिट्ठी चाहिए। तो उसने जाके ब्रह्मा बाबा को कहा दीदी ने। जब ब्रह्मा बाबा झोंपड़ी में थे, ब्रह्मा बाबा आ गए साथ साथ में। जब आए तो उन्होंने भाई साहब को बहुत गले लगाया, बहुत प्यार किया, क्योंकि भगवान की तलाश में थे। और उनके साथ एक भाई और भी आए हुए थे। तो बाबा ने दीदी को कहा आप इसको ले जाओ, मैं मिलूंगा नहीं इनको, एक तरफ वो गले लगा रहे हैं और उनके लिए कह रहे हैं मैं मिलूंगा नहीं। बाबा ने, दीदी ने पूछा बाबा ऐसे क्यों कर रहे, कहते इसका बहुत पाप कर्म का खाता बन जाएगा इस बच्चे का। और फिर भाई साहब को लेकर के जब झोंपड़ी में गए तो कहा बहुत हालचाल पूछा परिवार में कौन है, कौन कौन सदस्य है। तो फिर बाबा ने भाई साहब को कहा तुम नाथों के नाथ हो, तुमने भक्ति मार्ग में इतनी नोदा भक्ति की थी, जो रामेश्वरम मंदिर है वो तुम्हारी यादगार में बना हुआ है, ये तूने बनाया था, एक मंदिर ही बनाया था, अनेक मंदिर बनाए थे, आपने इतनी नोदा भक्ति की थी, भगवान ने प्रसन्न होकर के कलयुग में भी कितना कार्य, कितने मंदिर बनवाए। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये ज्ञान जब परिवार के अंदर दिया गया, मैं तो उस समय पढ़ती थी, तो मेरे मन में तो बस एक यही धुन रहती थी कि मुझे जब ये बाबा को मैं मिली तो बाबा ने उस समय काफी वरदान दिए मुझे तुम आथा को, और बाबा ने कहा कि महावीर भी हो। मुझे याद आता है जब ये विकासपुरी का स्थान खुला 78 में बना था, और 1974 में हमने नजफगढ़ क्षेत्र में 65 गांव के अंदर सेवाएं दी। जब इमरजेंसी लागू हुई तो उस समय उसको यात्राओं को बंद किया गया। तो क्या हुआ, जब विकासपुरी में जब स्थान बना, एक कोठी कहाँ थी। अब क्या हुआ, अब मकान बनेंगे तभी तो लोग आएंगे, और मुझे बड़ी चिंता होती थी कि लोग आएंगे कब, ये बनेंगे। मैं कहती थी बाबा ये कब बनेंगे, मेरे ऊपर तो बहुत कर्जा चढ़ा हुआ, ये बंगला जो बना हुआ इसका मैं अगर किराए पर लूं तो कितना किराया मुझे देना पड़ेगा, तो मैं कोई सेवा भी नहीं कर रही। मुझे रात को बहुत रोना आता था, तो मैं क्या करती थी, जो खाती थी पीती थी, मेरे पास एक अलमारी में तराजू रखा हुआ था, मैं तोल तोल के खाती थी। मैं खा करके कितना साबुन लगाती हूँ, कितना खर्चा मेरे ऊपर होता है, मैं सेवा क्या करती हूँ। मैं भाई साहब को कहती थी आपने तो बहुत भाग्य बना लिया, मेरा भाग्य कैसे बनेगा, मैं तो बोझ ही लूं, अब मैं सेवा करूं तो करूं का। मेरे को क्योंकि बहुत चिंता होती थी, और मैंने मधुबन में भी बाबा को मिलाने के लिए पार्टी लेके जानी है, कहां से लेके जाऊंगी। तो क्या हुआ, एच ब्लॉक के अंदर वहां विकासपुरी में जितने भी मकान बनाने वाले है ना, वो उसमें 1400 के लगभग रहते थे, मकान बनाने वाले मिस्त्री थे, ऐसे कई थे। तो मैंने उनसे एक माता को साथ लेके गई, क्योंकि मुझे सेवा करनी है तो क्या करूं कहां करूं। तो मैंने उनसे पूछा हम आपको सेवा करना चाहते हैं तो आप कौन सा समय दे सकते हैं। उन्होंने कहा बहन हम आपको 9 से 10 का टाइम दे सकते हैं। मैंने सोचा अरे 9 से 10 से क्या हो गया, मैं सेवा करने के लिए जाऊंगी, मैंने सेवा जरूर करनी। फिर मैं रात को 9 से 10 सेवा करने के लिए जाती थी। तो हमारे यहाँ पहले तो भाई बहन कहते थे बड़ी अच्छी बात है, इनकी सेवा करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, 2-3 दिन के बाद कहते थे दीदी वहां तो बांस आती है, इन लोगों की क्या सेवा करनी है, तो वहां तो मच्छर भी है, पानी भी है, खड्डे भी है। तो मैंने कहा तुम करो या ना करो, मैं तो जरूर करूंगी। ये मेरे भाई बहने हैं, अगर वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो अगर मेरा कोई भाई बहन झुग्गी झोपड़ी में रहेगा क्या हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। तुम करो या ना करो मैं जरूर करूंगी। मैं लगातार जाती रही। तो क्या हुआ, देखो इनमें कितना प्यार होता है। तो एक बारी मैं विकासपुरी से नजफगढ़ की तरफ जा रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, तो एक रिक्शे वाला पीछे से मैं तो कुछ सोचा भी नहीं, मैं यहाँ इतनी छोटी एज की थी, कौन मामा किसको कह रहा है मुझे नहीं मालूम। उसने रिक्शा मेरे पास में आके रोकी, कहते माँ आप बैठ जाओ। मैं बैठ गई। जब मेरा बस स्टैंड आया तो मैंने उस समय 2 रुपए रिक्शे के लगते थे, मैंने उसको 2 रुपए निकाल करके दिए, वो ले नहीं। कहते आप हमारे लिए रात को 9 से 10 सेवा करने के लिए आते थे तो हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, आपका कोई हमें किराया नहीं लेना है, और हम आप कब जाओगे किस समय जाओगे हम छोड़ भी देंगे, जब आप आओगे ले भी जाएंगे छोड़ भी देंगे। तो मैंने मेरे मन में आया मैं गरीब व्यक्ति है, ये तो मेरे ऊपर बहुत बोझ है, मैं बैठ कर के आई हूँ, मुझे इसका किराया, पर उसने मेरा किराया नहीं लिया। फिर क्या हुआ, अब मैं कैसे सेवा करूँ। मेरी क्लास के अंदर जो चद्दर थी ना उसपे गुलाब के फूल थे। अब भाई मेरे गुलाब के फूल है, अब वो तो दूसरे फूल है, मैं उनको अपने स्टूडेंट समझ के भाई बहने समझ करके मैं क्लास कराती थी। मैं तो क्लास कराती थी, बहुत बाबा को याद भी करती थी, और जो मेरे चित्र थे ना वो मेरे स्टूडेंट थे, मैं उनको कोर्स कराती थी। क्योंकि आह्वान करते करते एक बार क्या हुआ, एक तिलक नगर के पास से महावीर नगर है, तो वहां से मैं 10 बजे योग कर रही थी, एक बहन वहां आई, उसको उस स्थान का साक्षात्कार हुआ। तो आ गई वो बहन 10 बजे के करीब, मैं योग में थी, वो इतनी बेचैन थी, उसको ये भी सूझबूझ नहीं थी कि मुझे जूता पहन के उतार के जाना है। अंदर आ गई, मैंने पूछा बहन आप कहाँ से आयो। वो तो कोई उत्तर ही नहीं दे रही थी, बहुत डिप्रेशन में थी और जूते सहित अंदर बैठ गए। मैंने बोला बहन जूते बाहर उतार दो। वो बहन मेरी कहां से सुनती। मैंने बाबा को बोला बाबा ये कुछ मुझे बता भी नहीं रही, ये पत्थर की मूर्ति है, तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। एक घंटा मैं भी योग करती रही, वो भी बैठी रही। फिर एक घंटे के बाद वो उठ के चली गई। फिर वो दूसरे दिन आई, फिर मैंने उससे पूछा, थोड़ा स्माइल फेस था उसका। फिर मैंने पूछा बहन आप कैसे, थोड़ा बस स्माइल फेस, फिर भी मैं योग में बिठा दिया उसको। तीसरे दिन फिर उसने बोला कि मुझे इस स्थान का साक्षात्कार हुआ है और ब्रह्मा बाबा का बाहर हमारे घर बड़े बड़े छे छे फुट के मम्मा बाबा का चित्र था, मुझे साक्षात्कार हुआ है, उस साक्षात्कार से मैं यहाँ आई हूँ। फिर उसके बाद उसने कोर्स वगैरह किया, वैसे उसने एम ए बी एड थी तो उसका क्या, न्यूली मैरिड थी, पति ने डाइवोर्स कर दिया था, तो उससे वो डिप्रेशन में चली गई। एक दो बारी गई तो उसने मारा पीटा, फिर वो वापस आ गई। फिर वो काफी समय तक क्लास वगैरह करती रही। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो हम फूलों की सेवा करते थे तो वो फूलों से जो जो स्थान बने वहां से आत्माएं आई हमारे आस पड़ोस से। मैंने कहा मैं अब क्या करूं, ब्रह्मा कुमारियों के तो खिलाफ है, लोग बात सुनने ही नहीं चाहते। मैंने सोचा जो हमारे इधर इधर बच्चे हैं ना, मैं इनको एक तरीका है इनको पढ़ाऊंगी ना, नैतिक बातें भी दूंगी, पर इस बहाने जहाँ गायें होती है ना उसका बछड़ा चला जाए तो गायें माँ माँ करती पीछे चली जाती है, अगर ये बछड़े आ गए तो माताएं जो है वो अपने आप ही आ जाएंगी। तो मैंने ये सोचा इन जो बच्चे छठी क्लास में है, सेवन्थ क्लास के है या फिफ्थ क्लास के थे, मैं उनको बुलाती थी, एक घंटा मैं उनको पढ़ाती थी और फिर मॉरल वैल्यूज पर भी मैं उनकी क्लासेस कराती थी। तो क्या वो हमारे विकासपुरी में एक चित्र था, वो बंधनों में बंधा हुआ था, एक सर बंधा हुआ एक इंसान था जो कैसे विकारों से बंधा हुआ है, व्यसनों से बंधा हुआ है, तो वो कितना जकड़ा हुआ है। तो जो छठी क्लास की बच्ची थी ना, तो मुझे पता नहीं थी, मैं अंदर काम कर रही थी किचन के अंदर अपने पापा को लेके आई, तो वो शराब पीता था और वो अंडे खुद भी खाता था, बच्चों के मुंह में जबरदस्ती डालता था। कहा देखो पापा ये आपका चित्र है, ऐसे धर्मराज में आपको धर्मराज के डंडे पड़ेंगे और ऐसे जैसे आप हमें जबरदस्ती नीट खिलाते हो, अंडे खिलाते हो, तो देखो क्या हाल होगा तुम्हारा। उसने पूरा चित्र उस बच्ची ने उसको समझा दिया। उसके पापा ने मुझे बुलाया, कहा आप दीदी आज के बाद न मैं शराब पीऊंगा, न मैं खुद अंडे खाऊंगा, न ये तो मेरी गुरु बन गई। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में जब बच्चे ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं, अपने माँ बाप को सुधार सकते हैं, उससे मेरे पड़ोस के अंदर बहुत फर्क पड़ा। लोग जितनी भी गलियां थी बहुत प्यार करते थे। तो इस तरह से फिर हमारी जो सेवाएं थी, मुझे ये होता था कि मुझे फिर पास में जो गांव थे हम वहां भी करते थे, केशवपुर है, अस्तसाल है, आप शाहपुर है, कई स्थानों की मैं सेवाएं करते थे। तो हमने नजफगढ़ का क्षेत्र, गुलजार दादी ने कहा और बड़ी दीदी ने कि अभी आपको इस क्षेत्र की सेवाएं करनी है, तो हम लोग रोज अप एंड डाउन करते थे। तो उन दिनों के अंदर क्योंकि पवित्रता की बात थी, ब्रह्मा कुमारियों के तो लोग बहुत खिलाफ ही थे, कोई स्थान किराए पे भी नहीं देता था, जो स्थान पहले दे देते थे एग्री कर लेते थे, जब पता लगता था ये ब्रह्मा कुमारी हैं तो फिर मना कर देते थे, बयाना दिया हुआ भी वापस कर देते थे। तो एक बारी की बात है, हमारा रोशनपुर मंडी में जब पहली बार हमने किराए पे स्थान लिया, चार रूम थे हमारे पास, आधा टाइम 2 बजे तक मैं बैठती थी और 2 बजे के बाद 9 बजे तक भाई साहब रात्रि को आते थे। तो हमारा एक ताऊ जी थे उस मकान बैठे हुए, ताऊ जी उसको बुजुर्ग थे तो मैं ताऊ जी कहती थी, तो ताऊ जी सिर पे हाथ फेरते थे। अब मेरे को ये नहीं पता मेरी सेवाओं में भी हाथ फेर रहे हैं, तो मैं तो सोच ताऊ जी तो बहुत अच्छी है, और छोटी थी मैं इतना इस चीज को नहीं समझी। तो हम मेरे सोचा एक साल हो गया हम इतना किराया भी देती है और ये क्या बात है, इतनी प्रदर्शनियां लगाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो लोग कहाँ जाते हैं, वहां तो बड़ा अच्छा अच्छा करते हैं। बाद में हमें किसी पड़ोसी ने बताया ये जो ताऊ जी सीढ़ियों के नीचे बैठते हैं ना, हम आते हैं तो ये कहता है यहाँ तो रंडीपना होता है इसलिए हम वापस चले जाते हैं। तो हमने कहा बाबा अब इसको क्या करें, पैसा तो दिया ही हुआ है, अब इनको हम कहेंगे तो और बिगड़ेंगे। फिर हम लोगों ने बड़े प्यार से कहा, ताऊ जी अब हमने थोड़ी यहाँ सेवा नहीं हो रही है, हम दूसरी जगह चेंज करते हैं। और वो ताऊ जी तो छुट्टी नहीं करने दे, कहे नहीं बेटे तुम यहीं आना, यहीं सेवा करनी है। मैंने उसको क्या बोलते कि आप क्या करते हो, पता तो चल ही चुका था कि ऐसे ऐसे लोगों को उकसाता है, भड़काता है। और सेवाएं भी देखो उन दिनों में क्या होता था, वहां पर लोग लैट्रिन बाहर करते थे और भाई साहब जब प्रदर्शनियां लगाते थे तो फावड़े से उनको साफ करते, फिर झाड़ू लगाना, फिर पानी छिड़काव करना। और इतना उन दिनों के अंदर विरोध था कि सर्वव्यापी के पॉइंट पर कुछ ऐसे है, गीता का भगवान कौन है, बड़ा विरोध करते थे, उठा करके चित्र फेंक देना और धक्का मार देना, मुक्का मार देना, ये सब चलता। फिर उसके बाद हमने दूसरा मकान चेंज किया। दूसरे मकान में क्या है, तो माताएं आती थी, बहुत अच्छी माताएं आती थी, अरे कैसे बैठना है वो कंघी नहीं करती थी, और कपड़े कैसे पहनने वो भी सिखाना पड़ता था, उक्कर उक्कर ऐसी भाषा वो उनकी भाषा होती थी। तो कहते दीदी घने दिन नहीं हुए, बस दो ही तो महीने हुए हैं, अभी दो महीनों का गिरी के कपड़े नहीं बदले किए। वो भाई उनको वो भी समझाया और ज्ञान की बातें भी समझाते थे। तो क्योंकि भगवान ने कहा तू जो कहती थी ना, तो ऐसे लोगों की सेवा करनी है अब करनी है। तो मैंने उनसे जब कुछ देखा, कुछ दिन समझाने के बाद, भाई इनको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो मैंने उनसे पूछ लिए प्रश्न। और उन्होंने तो जो माताएं थी ना आपस में मीटिंग कर ले, आना ही बंद कर दिया। मैं रोज विकासपुरी से जाऊं, भाई आज 10 दिन हो गया कोई माता आ ही नहीं रही है। तो मैंने उस मकान में जो मकान वाली थी, मैंने उससे पूछा माता जी सारी माताएं कहाँ चली गई है, कोई बात तो हुई नहीं है। तो उतने में उसकी सब्जी की दुकान थी, एक माता सब्जी लेने आई, उसी ग्रुप की थी। मैंने कहा सब माताएं कहाँ चली गई है, कहती दीदी हमारी तो बेइज्जती हो गई, आपने प्रश्न पूछा और हमें आता नहीं था, हमने सोचा हम नहीं जाएंगे अब, ये तो हमारी बेइज्जती होगी। मैंने कहा बेइज्जती नहीं है, अगर टीचर पूछेगा नहीं उसको कैसे पता चलेगा आपको समझ में आता है या नहीं आता। और दो ऐसा, फिर उसके बाद हमने और मकान लिया, मकान मकान में शिफ्ट करते गए। क्या हुआ, एक बारी की बात है कि कैसा पेपर आता है, उस मकान का किराया भी हम देते थे और चाबियां भी मैं उनको दे के आती थी, भाई आप ही संभालना। जो क्लास कराने वाले थे तो बहुत आपस में शाम के क्लास वो कराते थे, तो उनकी क्या हुआ मन में आया, उनकी एक बेटी थी, भाई ये इसको मुझे भगा दिया जाए और उसको वहां का मालिक बना दिया जाए, आपस में योजना बना ली। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने आना था मधुबन में, तो शाम को फोन आया नजफगढ़ से कि भाई ऐसा है 2 ताले लगे पड़े हैं आश्रम को, तो किसने ताले लगाए हैं 2 ताले, कहते ऐसे ताले लगाए और जो स्टूडेंट थे वो भी सारे ले गए। और मैं स्टूडेंट जब हम शाम आए वहां, शाम को मैं और भाई साहब एक भाई हमारे साथ और भी थे, देखा 2 ताले लगे पड़े हैं, तो उसको ताले वो खोले नहीं, ताले को तोड़ा गया। भाई किराया हम देते हैं, सब कुछ हम करते हैं, ताले क्यों लगाए। और अंदर उनकी ये मीटिंग हुई थी हम ऐसा करेंगे ये भाग जाएगी सदा काल के लिए। ठीक है भाई, मैं मधुबन आना था, मैं आ गई। तो उसके बाद मेरे पास रह गए सारे स्टूडेंट, ले गए जितने भी 35-40 स्टूडेंट थे वो गए, और 3 बच्चे मेरे पास रह गए 8वीं क्लास के थे। अब मैंने बाबा को कहा बाबा सारी क्लास चले गई, क्यों आपस में इनकी रग होती है, मेरी कौन सुनेगा, मैं तो विदेशी थी वो देशी थे। तो मैंने 3 थे, मैंने बाबू कहा बाबा ये मेरे को 2 बजे बुलाया, दोपहर को मैं आती थी बस बदली, और इतने वहां से साईं बाबा के मंदिर से वहां तक पैदल आना, कोई साधन ही नहीं थे, तो आपने यही काम करवाना था मेरे से, मुझे 2 बजे बुलाया, 4 बजे बुलाते हैं, जब भी बुलाते हैं मैं सेवा में आती हूँ और घंटों में खड़ी रहती, बसें बड़ी कम चलती थी। मैंने बाबा को बोला, उनको कुछ नहीं बोला, उनके लिए फिर मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं आया, इन्होंने ये किया वो किया, सारे स्टूडेंट्स ले गए। भाई बढ़िया, उसके घर में क्लास चलती रही, पिकनिक होती रही, रोज कुछ न कुछ खिलाते रहे। तो क्या हुआ 9-10 महीने हो गए, रोज आए दिन कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो क्या हुआ, उनको अंदर कुछ भासना नहीं आई, तो बाद में उन्होंने, और रात को उनकी नींद फिट गई और उनको बाबा धर्मराज के रूप में दिखाई देता था, धर्मराज के रूप में दिखाई देता था कि जिस देवी ने तुम्हारी सेवा की, तुमने उनको ठुकरा करके तुम एक गृहस्थी के घर में जा रहे हो, और वो बच्ची बहन आज भी वो एंटी पार्टी के हेड है जिसने किया था। तो मेरे पास क्या हुआ, जब मैं बस से उतरती थी ना, माताएं गलियों में छिप छिप के मिलती थी, दीदी माफ कर दो, हमने बहुत गलती की है, माफ कर दो। मैंने कहा तुमने गलती नहीं की है, मैंने तुमको ऐसी, इसका मतलब मैंने कुछ आपको ठीक दिया नहीं है ज्ञान, तो गलती क्या की, आपकी तो कोई गलती नहीं है, मैंने कहा। फिर उनको इतनी बेचैनी हो गई कि नींद फिट गई, रोज धर्मराज उनके सामने आए, तो वो बहुत चीजें लाई। मैंने कहा मैं इन चीजों को मुझे चाहिए ही नहीं है, मैं एक धनाढ्य परिवार से थी, इन चीजों की तो मुझे परवाह ही नहीं, मुझे कुछ ला करके दे, कोई कुछ ला के दे, मैं स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा बस मैंने तुमको अच्छा फूल नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें सुगंधदार नहीं बनाया है, तो मैं ये चीजें स्वीकार नहीं करूंगी। दीदी हम आपके पास, सारा जिसने किया था उनका हेड वो भी आ गया, और जो उसके साथ प्रजा गई हुई थी वो भी आ गई, सारे वापस आ गए, और मेज पड़ी हुई थी मेरी रिसेप्शन रूम में, वो नाक रगड़े कानों को खींचा, दीदी माफ कर दो। अब धर्म, मैं धर्मराज नहीं हूँ, कहती वो धर्मराज दिखाई दे रहा है, दीदी माफ कर दो, माफ कर दो। और देखो सारी क्लास चली गई, फिर मुड़ करके वापस आ गए। तो मेरे मन में उनके लिए जरा भी दुर्भावना नहीं आई, मैं सोचती थी मेरा दोष है, इनका दोष नहीं, क्या कमी रह गई जो इनको अपनी तो अपनी लगी, मैं इनको अपनी नहीं लगी, तो कोई कमी क्या रही। तो मैंने उनको माफ किया, मेरे मन में उनके लिए कोई बात ही नहीं थी। तो मेरे जीवन के अंदर मैंने देखा बहुत सारी बातें ऐसी आई। फिर एक बारी की बात है, हमारे विलेज एरिया के अंदर मैं जाती थी डिचाऊ में, वहां 100 की क्लास थी हमारी, मैं प्रवचन कर रही थी। पवित्रता पर तो विरोध होते ही है और आज भी है, देहातों के अंदर आज भी है, कहने लगे ये रोज रोज क्या इसका भगवान है, पवित्रता की बातें करती, ये तो हमारे घर पिटा देगी, हमारा ये कर देगी, तो आज इसका ना अच्छी तरह बताएंगे इसका भगवान क्या करता है। एक माता के अंदर भूत आता था, तो उसको सिखा करके ले आई मेरे पास और कहा कि इसको मारेगी, इसकी बाल खींचेगी, हम तमाशा देखेंगे इसका भगवान क्या करता है। अब मुझे पता भी नहीं था, वो सब नीचे बैठी हुई हैं, कोई उस समय कुर्सियां तो थी ही नहीं, और मेरा भी टीला ही होता था। तो मैंने जब प्रवचन चालू किया तो वो तो उसमें पुरुष की सोल आ गई, वही इतनी जैसे ये मेजर, मैं यहाँ बैठी आ गई, वो तो बहुत लंबी ऊंची थी। तो कहती है देवी मुझे माफ कर दे, देवी मुझे माफ कर दे, ये तेरे को मरवाने के लिए मुझे यहाँ बिठाया था ये तेरे बाल खींचेगी, मारेगी, पीटेगी, तमाशा देखेंगे इसका भगवान क्या करता है। अब मैंने तो, मुझे तो पता नहीं था कि ये मुझे मरवाने के लिए लाई हुई है। तो मैंने कहा नहीं, वो कूदे इसको, इनको मारेंगे, वो पीछे बैठ गई जा करके, इसको मारेंगे ना तो देखेंगे क्या करेगी ये। तो मैंने कहा तू मुझे मार ले तो क्या हो गया, मेरा तो कुछ नहीं जाता, मैं तो भगवान की बन गई, इनके बच्चों का क्या होगा। मैंने जबरदस्ती उसको पकड़ा, वो काबू भी ना आए। फिर वो माताओं ने कहा, 20-25 का ग्रुप था, कहती दीदी माफ कर दे, हमारे हमें नहीं पता था, हमने बहुत पाप कर्म कर दिया, देवी माफ कर दे। और भूत भी हम सोचे ना इनको पता नहीं होता, सब पता होता है भूतों को भी, किसको क्या करना है किसको नहीं क्या करना है। फिर उसके बाद बहुत सारी माताएं हमारी ज्ञान में आई। फिर एक बारी की बात है, उस ग्रुप में जब मैं धर्मपुरा में थी तो बहुत जो माताएं आती थी ना, बहुत बंधेली थी वहां की माताएं, मधुबन जाने है मधुबन जाने है। एक माता वो थी जिसके पति नहीं थे और उसकी संतान नहीं थी, उसके पति ने अपने भाइयों को प्रॉपर्टी दी हुई थी, वो उनके पास रहती थी, सब मधुबन जा रहे हैं, अब उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने भाई साहब को बताया, भाई साहब ऐसे ऐसे वो माता जो है ना वो जाना चाहती है, पर उसके पास पैसे नहीं, कहा उसका टिकट करवा लो और उसके 2-3 जोड़े कपड़े भी बनवा दो। मैंने कहा ठीक है। जब वो गई, वहां की माताएं भी मेरे साथ थी, मैं माउंट आबू ये पांडव भवन में आते थे, तो आई तो उसकी मेरी मीटिंग चल रही थी, प्रकाशमणि दादी जी थे और हम टीचर्स भी कम होती थी उन दिनों के अंदर, तो माता मुझे कहती है दीदी विशाल भवन में कई सेंटरों की माताएं थी, दीदी उस माता को कुछ हो गया, आपकी माता को कुछ हो गया। तो मैं मीटिंग छोड़ के चले गई, मैंने देखा वो वोमिटिंग कर रही थी और लूज मोशन उसको हुए थे, कपड़े सारे सने हुए थे, सारी माताएं खड़ी होकर हाय 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 कर रही। मैंने सोचा अरे इसकी आंखें भी निकली पड़ी है और इतनी उल्टियां करके इसकी हालत खराब हुई है, मैं अभी इनको कुछ नहीं कहूंगी। मैं उस माता को साड़ी बदली करके धुलाई करके मैंने डाल करके ना हॉस्पिटल इधर लेके आई। डॉक्टर ने कहा इसको ले जाओ, इसकी हालत सीरियस है। मैं फिर उसको ग्लोबल हॉस्पिटल में लेके गई और उन माताओं को भी साथ में रखा, क्योंकि उसके पड़ोस में उनको जानती है बेटों को। तो मैंने कहा आप मेरे साथ चलो। तो डॉक्टर ने जब देखा उसकी तबीयत बहुत खराब है और मुझे कहा कि बहन इनके साथ कौन रुकेगा, तो माताओं ने कहा हम नहीं रुकेंगे, हम किराया भर के आए हैं, हम तो नहीं रुकेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं रुकूंगी, नहीं रुकती तो क्या होगा, कहते आप रुकोगे, मैंने कहा हाँ को मैं रुकूंगी। उसने कहा 7 दिन तक मैं उसके साथ रही माताजी के साथ। तो वो कहती है डॉक्टर ने कहा इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इसकी हालत सीरियस। मैंने कहा डॉक्टर भाई आप इंजेक्शन लगाओ, माता जी को ठीक कर दो। माता कहती मरनी है मरती है तो मरने दो, बूढ़ी है इसको कौन रोएगा। मैंने कहा इंसान इसके लिए चला जाए पैसे के लिए, ये क्या है जीवन। तो मैं 7 दिन उसके साथ रही और उसके बाद बाबा ने आना था 7 दिन के बाद। तो मैंने डॉक्टर भाई को कहा डॉक्टर भाई जिसके लिए वो आई है फिर पता नहीं आना होगा या नहीं होना होगा, आप मुझे थोड़े 2 घंटे के लिए छुट्टी दे दो, मैं भगवान को मिला करके वापस मैं आऊंगी और इनको लेके आऊंगी। डॉक्टर भाई ने एग्री किया और मुझे छुट्टी दे दी, मैं ले आई। तो बाबा आए हुए थे, तो मनोहर दादी ने बाबा ने मुझे बुलाया ऐसे करके, तो मनोहर दादी ने कहा आप ऊपर आ जाओ। जब मैं आई तो बाबा ने कहा बच्ची तुम श्रवण कुमार हो, मेरे साथ तो सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, एक मैं जवान थी उनमें। तो कहती तुमने जो इतनी मतलब बूढ़ियों को ला करके इतनी सेवा की, सचमुच में आप महावीर हो, श्रवण कुमार हो। और जब वो माता को मैं ठीक करके उसके घर में मतलब विरोधी थे वो बेटा बहू, उनको जब पता लगा कि यहाँ इस प्रकार का महामारी की हालत सीरियस हो गई थी, तो कैसे ये ठीक इनका इलाज हुआ, किस तरह से ध्यान दिया गया, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि हम आप ने इतनी हमारी माँ की सेवा की है, तो उन्होंने मुझे पैसा देने लगे। मैंने नहीं स्वीकार किया, मैंने कहा नहीं आपकी माँ क्या मेरी माँ क्या, सेवा तो मेरा जीवन है, सेवा के लिए हमने जीवन दिया हुआ है। तो उसके बाद उसके जो बहू बेटा एंटी थे वो ज्ञान में चलने लग गए। तो इस हमारे इस इलाके की जो सेवाएं थी इस टाइप की थी। फिर उसके बाद मैं साथ में नीलवाल गांव में जाती थी, मैं नीलवाल 3 किलोमीटर मुझे पैदल जाना है, 3 किलोमीटर मुझे वापस भी आना है। जब मैं आ रही थी तो अचानक बारिश हो गई, जब बारिश बस एक ही जाती थी, सुबह एक ही जाती थी शाम को, मुझे अगर बस नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो मैं बस हो रही है, मैं सोचा अब मैं क्या करूं, मैं वापस गांव में जाऊंगी तो मेरी बस भी निकल जाएगी, तो नहीं तो ठेला वेला मिलेगा उस पर बैठना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। मैंने वहां पर ना एक रेट और एक चल रहा था और कमरा था बना हुआ, अब मुझे नहीं पता था, मैं वहां ना सोचा बारिश आ रही है कानों में पानी जाएगा, तो मैं वहां पर क्या हुआ खड़ी हो गई दीवार की ओट में और अंदर से आवाज आई तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से। अरे मैंने इधर देखा उधर देखा कोई है ही नहीं, यार आवाज भाई साहब जैसी लगी। मैंने कहा भाई साहब विकासपुरी में मैं यहाँ हूँ, उनको क्या पता मैं नीलवाल में बैठी हुई या कहाँ बैठी हूँ, ये कैसे आवाज आ रही है। और इतने में एक बैलगाड़ी वाला बूढ़ा बाबा आता है, तो वो कहते हैं बेटे तेरे हट जा यहाँ से, यहाँ भूतों का ढेर है, तेरे हाथ गोड़े टूट जाएंगे, चलो यहाँ से। तो मैंने उसमें से निकल के बाहर आई, रेहट के पास में रेहट था और वो कमरा था भूतों वाला। तो मेरे को फिर बाद में जाती है तो माताएं कहती है दीदी भगवान ने बचा लिया, यहाँ हाथ गोटे ऐसे टूटते हैं आपका नाम निशान भी नहीं रहता। तो जीवन के अंदर ये चीजें हमारी लाइफ में आती हैं, हमें पता भी लगता है क्या है ताकत, क्या है क्या नहीं है। बाबा कैसे बचाता है, वो भी तो बचाता था ना बार बार, कि भूत भी आ गए वो भी आ गए। तो मुझे क्या हुआ, माता ने कहती दीदी इस एरिया में अगर कोई धर्म का काम करता ना उसको जिंदा जला देते। तो मेरे को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे आती थी, मैंने कहा जलाते है तो जला ले, इस यहाँ के नजफगढ़ वालों का नाम भी रोशन हो जाएगा, मैं तो मर भी जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ रहा है मुझे, अमर तो हो जाऊंगी ना, सदा याद रहेंगे कि इसको जलाया था। तो मैं भगवान का कार्य कर रही हूँ, जला भी देंगे तो तुम क्यों चिंता करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे इन चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता था, मेरे मन में इनके प्रति नफरत नहीं आती थी। एक बार क्या हुआ, नांगलोई स्टैंड पर मेला लगाना था, तो मेला मेरे मन में संकल्प था कि मुझे मेला करना ही करना है, और मेरे पास 6,000 इकट्ठे हुए, सिर्फ 6,000। अब भाई साहब मेरे से पूछते थे बहन क्या हो रहा है क्या आ रहा है, मैंने कहा सब हो गया, सब हो जाएगा भाई साहब, सब हो जाएगा, क्योंकि टेंटों का खर्चा, कुर्सियों का खर्चा, बैनर का खर्चा, पब्लिसिटी का खर्चा, मैंने देखा दिन रह गया थोड़े, और मैं भाई साहब को कह रही हूँ सब हो जाएगा, और मेरे मन में था कि मैंने कुछ नहीं लेना, मैंने करना है मेला, मेरे अंदर ये बाबा को बोलती थी मुझे करना ही करना है। तो आप देखो एक शराबी आया, उसकी शराब छूट गई, तो उसने कहा दीदी मेरी शराब छूट जाएगी ना सारा टेंट वेंट कुर्सियों का खर्चा मैं ही कर दूंगा, और वो किस साथी में उसकी शराब छूट गई, क्योंकि बाबा ने अपना काम कराना था, कितना चतुर सुजाना है, उसने टेंट भी लगा दिया, कुर्सियां भी लगा दी, खुद ही किया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर पर्चे भी फ्री में छप गए, बैनर भी, होर्डिंग भी, पब्लिसिटी भी, 10 जहां मेला करना था ना, अब बताओ कितना बड़ा पेपर आया। रात को दूसरे हमारे पास दादियों ने उद्घाटन करने के लिए आना था, रात को 10 बजे फोन आया कि बहुत बुरी तरह गालियां देने लग गया वो मुझे, भाई ये मेला हम तुम्हारा उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, कल देखना गोलियां चलेंगी, जो आएंगे उनको मारेंगे हम। भाई मैंने कहा भाई जी आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस मेले के अंदर मैं हर पार्टी के लोगों को बुलाऊंगी, आपने कहा हमें कोई इतराज नहीं है। तो मैंने कहा कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे, लोकदल वाले भी, तो आपने तो ओके किया था, मैंने तभी मेला किया है। तो फिर वो कहां, उसके अंदर तो भूत आया हुआ तो कहां से मानता, कल उसको अंदर आएगा तो हम गोलियां चलाएंगे, फिर आप देख लेना। और मैंने सोचा मेरी बहनें हैं, मैं इनको क्या बताऊं ना, मैंने भाई साहब को फोन किया, मैं पूरी रात बाबा को कहा बाबा आप बुद्धिमानों के बुद्धिमानों, ऐसे लोग पहले भी यहाँ ऐसे काम होते हैं, कहीं ऐसा ना हो दादियां आ रही हैं और यहाँ गोलियां चले तो बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। तो वो कहने, तो मैं पूरी रात बाबा को याद किया, फिर मेरे को एक युक्ति सोची, मैंने कहा वो जिसने आना है ना MLA ने, मैंने कहा भाई जी हमारे पास ना वहाँ तो आप दादी के साथ बैठ भी नहीं सकोगे, तो अच्छा यही है आप आश्रम में आ जाना, कम से कम घंटा डेढ़ घंटा दादी के साथ बैठोगे तो ज्ञान चर्चा भी हो जाएगी, दादी जी से मिलना हो जाएगा। उसने कहा ठीक है ओके, मैंने कहा अच्छा एक बुला तो टेली। फिर मैंने भाई को उसके पास प्यार से भेजा, मैंने कहा कि आप उसको जाकर के समझा के आओ, जिसके लिए आपने ये काम गोलियां चलानी है ना वो नहीं आएंगे, और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब आएंगे, 10 दिन का मेला था। तो फिर जब पहले तो इतने रात भर ऐसा करता रहा, दूसरे दिन वो ठंडा हो गया, फिर हमारा मेला हुआ उसमें दादियां भी आई तो मेला बहुत अच्छा हुआ। कहां तो वो विरोध कर रहा था, फिर रोज 8-10 दिन तक तो वो रोज फल लेके बांटने लग गया, बाद में कहीं इस मेले को हटाओ नहीं, इस मेले को ये कौन रक्षा करता है, कैसे बाबा उसको बुद्धिमानों का बुद्धिमान है टच किया। कई बार पूछता था आप मेला फिर लगाओगे, फिर मेला, क्योंकि उसके स्थान की पब्लिसिटी भी हो रही थी। तो भगवान अपना कार्य कैसे कराता है ये हमने अच्छी तरह देखा है। फिर जीवन के अंदर हमने कई बार देखा कि कितना भी विरोध हुआ, कितना भी विरोध हुआ, तो मेरे मन में उन लोगों के प्रति दुर्भावना नहीं आती थी, कर होता भी था तो फिर मन में आता था ये क्या कारण, मेरे किसी जन्म का हिसाब होगा इनके साथ। एक बार हमारी हेमा बहन यहाँ बैठी हुई है, तो क्या हुआ मैंने तो कुछ इसको कभी मारा भी नहीं था, तो ना हम सारे भाई बहनों ने मिलकर कहा, अरे हमने देखा वो घर जा रही थी, दीदी ने पूनम दीदी ने बड़ा मारा मारते मारते अंदर लेके ये बात, वो तो घर चली गई तो मेरी तो अच्छी वो आ गई। मैंने कहा बाबा ये घर में एक है, इसकी माँ तो पहले ही नहीं आने देती है, तो अब तो नहीं आएगी, क्योंकि ये छोड़नी बस स्टैंड तक मतलब ट्रेन में बिठा के आए और सारी चर्चा दूर तक चली गई। मैंने बाबा को कहा बाबा इतना बड़ा कलंक, मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया और ये कहते मार मार के अंदर ले गए। मैंने कहा बाबा कुछ भी कर तो उसको भेज देना, उसको भेज देना, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, सारी सेवा ही खत्म हो जाएगी, पहले ही ताले लगाए हुए हैं यहाँ। फिर मैं बाबा को याद करती रही, चलो वो दो दिन के लिए आ जाए आ जाए। फिर हेमा आई बहन तो मैंने उससे पूछा तुमको किसने मारा, उसने कहा मेरे, तो मैंने कहा सभा में बोलो किसने मारा। मतलब इस टाइप की बातें बहुत आई हमारे जीवन के अंदर, पर हमने देखा अच्छा ये आ गई तो बाबा ने हमारी लाज रखी, नहीं तो कितनी अफवाहें गलत फैल चुकी थी। फिर इस तरह से मेरे जीवन में और भी पेपर आए, क्या आए, जो कुमार थे ना जो 13-13 साल वाले, अब उनकी शादी जवान हो गए हैं, अब उनकी माँ नौकरी ना लगे तो मेरे लिए मुश्किल, भाई नौकरी क्यों नहीं लगवाती, भाई मैं नौकरी थोड़ा लगवाऊंगी, नौकरी तो गवर्नमेंट देगी मैं दूंगी। फिर तो घंटों सड़क के बाहर खड़े होकर रंडी वैश्या ये गालियां एक एक घंटा देते रहे, ठीक है दे रही है, मैं नौकरी कहां से दे। एक रात 10 बजे 32 लोगों को लेके आ गई तो माता, कहे मेरे बेटे की शादी करवा दे। तो मैंने कहा शादी तूने करनी कर, उसने करवानी है तो मैं क्या करूं, शादी तुम्हारे घर में मैं क्यों आऊंगी, करने वाला करे, मैं रोक रही हूं क्या उसको शादी के लिए। तो वो उसने क्या किया, मुझे जबरदस्ती कही तू मेरे घर चल इसकी शादी करवा, मेरा बड़ा बेटा पागल है अगर ये नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होगी। मैंने कहा भाई वो उसने बाल खोल दिए, जोर जोर से माथा पीटने लग गई, भूत जैसे उसमें आ गया इतनी जोर जोर से यहाँ। तो मैंने कहा भाई मैं तेरे घर नहीं आने वाली, रात को मैं तेरे घर क्यों करूं आऊंगी। फिर भाई गालियां दे दू के एक दो घंटा वो चिल्लाती रही जैसे भूत आ जाता है उसके अंदर बाल, और वो ज्ञान में चलने वाली थी, पेपर कैसे आता है। फिर वो चली गई, शादी कर ली उसने, जन्माष्टमी का दिन था, काली साड़ी पहनी हुई थी, पूरा घूंघट निकाल के बहू को भी लाई हुई थी, कहती दीदी माफ कर दे पहले तो आपको बहुत गालियां दी थी, बहुत गालियां दी। मैं इनको कोई बात नहीं, मूर्ति बनती है ना छनेकार उसको बहुत छेने मारता है हथौड़े से तब जाके मूर्ति बनती है, तो भाई तू मेरे को थोड़े तो मारोगे ही मारोगे मूर्ति ऐसे थोड़ा बन जाएगी, आराम से मूर्ति नहीं बनती है। तो फिर उसके बाद वो बेटा तो चल रहा है अभी भी आता है वो, तो माता जी भी बीच बीच में आती रहती है। तो ये हमारे मतलब सेवाओं के अंदर ये सब जो विघ्न है ना, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें जीवन में आती हैं और हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना इसमें ठहरते हैं या घबरा जाते हैं या बेचैन होते हैं। अभी भी जीवन की लंबी यात्रा है, ना जाने और कितने आएंगे, क्योंकि मैं पहले ही तो कहती थी भगवान को जो महान लोग हैं उनके जीवन में इतने संघर्ष आते हैं, वो कैसे इस संघर्ष को पार करके ही तो बड़े बनते हैं। हम कहते हैं हमें भगवान मिला है, भगवान मिला है, तो उनको तो वो भगवान भी नहीं मिला था, मेरे मन में ये आता था हमें भगवान मिला है, हमारे अंदर संघर्ष को पार करने की शक्ति होनी चाहिए। ओम शांति। चलेगा क्या? ओम शांति, ओम शांति। 9:30 होने वाला, आपको क्या इसमें मजा आ रहा होगा? हाँ मैं एक अनुभव बताती हूँ, जो भाई साहब थे हम कहते हैं ये मेरा परिवार है, सचमुच में हम दिल से पूछे ये परिवार है क्या, हम अपने परिवार को अपना परिवार समझते हैं या दूसरे के जो दूसरा है वो भी हमारा परिवार है। तो मैं एक अनुभव सुनाती हूँ, भाई साहब के जीवन से बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। तो हमारे यहाँ मद्रास की रैली आनी थी और वो 50-60 के लगभग लोगों ने आना था, मेरे पास भी आना था, नांगलोई वाली देवकी बहन, यहाँ के भाई बहन शायद नहीं भी जानते होंगे, उसके पास भी रैली पंजाब से आनी थी। तो रात को भाई साहब मुझे कहते, बहन मैं कल जाऊंगा नांगलोई। मैंने पूछा, भाई साहब नांगलोई क्या करने जाओगे? कहते नहीं मुझे जाना है, मुझे बाबा कह रहे तुझे जाना है। मैंने कहा क्या देवकी बहन ने निमंत्रण दिया, क्या फोन आया आपके पास? कहते बाबा का फोन आया है। तो बाबा का कमरे में हर बात पूछते थे। मैंने कहा कोई फोन तो आया नहीं, आप तो बहुत मर्यादा वाले, ऐसे कहीं जाते ही नहीं हो। कहते नहीं बहन, मैं सुबह 4 बजे जब आए ना तो मुझे अपनी चाय वाय वो खुद बनाते थे, पीने के बाद फिर वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा हमारे पास रैली 9 बजे आ रही है। कहते हैं आपका काम तो हो जाएगा, आपके पास भाई बहन समर्थ है, सब हो जाएगा, मुझे वहां जाना है। जब वहां जाते ना, वो बहन के पास माताएं थी गांवड़े की, तो भाई साहब गए, भाई साहब आ गए तो बड़ी खुश हो गई। भाई तो कोई है नहीं, तो भाई साहब ने पूछा बहन तुम रैली का कहाँ स्वागत करोगे? तो वो खच्चर होते है ना खच्चर, कहती है देखो भाई साहब यहाँ आएंगे खच्चर है ना, यहीं स्वागत कर दूंगी, तिलक लगा दूंगी और गुलदस्ते दे दूंगी। तो भाई साहब ने कहा बहन नहीं ऐसे नहीं है, बाहर से रैली आ रही है तो इसका स्वागत अच्छी तरह करना चाहिए। जो विधायक है हमारे, मतलब उस समय बिजेंदर थे वहां के विधायक और निगम पार्षद भी थे। तो भाई साहब ने कहा बहन मैं उनसे मिलता हूँ और जगह की व्यवस्था भी करता हूँ। तो भाई साहब ने विधायक को बुला लिया और निगम पार्षद को भी बुलाया और स्थान की व्यवस्था की। तो कहा कि बहन, मतलब बहन है वो मेरी बहन ना, मैं होती तो वो क्या करते, और वो भी तो मेरी बहन है। तो वो बहन का सारा स्वागत करा करके विधायक के द्वारा, निगम पार्षद के द्वारा, तो वो बहन इतनी खुश हुई, कहती है अपनी रैली आ रही है उसको छोड़ करके आज हम क्या कहेंगे, हमारे सेंटर पे ये प्रोग्राम है हम नहीं जाएंगे। आती है भावना नहीं आती है, पर उनकी ये भावना ही नहीं थी, बहुत विशाल थी। और वो बहन की कितनी खुशी हुई, इतनी खुशी, उसका कोई भाई भी नहीं था। तो बाबा कैसे सेवा, और वो टच कौन कर रहा था, बाबा ही तो कर रहा था उनको, और कौन कर रहा था। तो इस प्रकार की हमने उनके जीवन के अंदर ये सेवा देखी। इसके अलावा हमारे अंदर, उनके अंदर क्या था, जब पहले जब तक वो कोड़ी गरीब लोगों को खाना नहीं खिलाते थे तो खाना नहीं खाते थे, एक उनका नियम था। एक रात बारिश हो रही थी, कोई कोड़ी बैठा ही नहीं था, बाजार में गए और क्योंकि मैंने पूछा आज खाना, कहते आज मैं बहन खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मैंने इनको खाना नहीं खिलाया मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। तो हमें एक बारी की बात है, हमारे ब्रेड विभाग में उमाशंकर भाई है ज्ञान सरोवर में, क्लास खत्म हो गई थी, 9:10 का टाइम था। क्लास के बाद भाई साहब को बागवानी का बहुत शौक था, वो कर रहे थे और मैं भी क्लास के बाद बाहर उस खड़ी हुई देख रही थी। तो दो 18-18 साल के ये थे, एक प्रवेश भाई थे और एक ये उमाशंकर भाई, कुर्सियां बनवा लो कुर्सियां बनवा लो, तो भाई साहब बोनी करवा दो। तो भाई साहब ने नीचे से ऊपर तक तो देखा, ये तो भगवान के बच्चे हैं, तो कहा बोनी करवा लो। तो भाई साहब ने कहा बहन ऐसे करो इनको नाश्ता बना के खिला दो। मैंने परांठे वगैरह बना करके उनको खिलाए। पूछा कहाँ रहते हो? कहा हम ना पुल के नीचे रहते हैं। ये बात सुनते ही उनको ये लगी जैसे मेरा बच्चा पुल के नीचे रहे तो मुझे क्या हालत होगी। कहा कि आप ऐसा है पुल के नीचे रहते हो? कहते हाँ भाई साहब पुल के नीचे रहते हैं। फिर भाई साहब ने कहा मेरा जो स्कूल है ना तुम दोनों वहीं ठहरना, वहीं रहना, कोई किराया नहीं लेंगे हम आपको, आप वहीं ठहरना। तो दूसरे दिन जब भाई साहब स्कूल जाते हैं तो वो देखते हैं कि इनके पास कोई सामान ही नहीं है, बिस्तरा भी नहीं है, खाने पीने की चीजें भी नहीं, रात को ये कैसे, दिसंबर का महीना है कैसे रहे होंगे। तो कहा कि मैं जाना था मुझे सेवाओं में। मुझे कहा बहन मैं अभी ना तेलंगाना नगर से, जब तक मैं इनका बिस्तरा सामान खाने पीने का नहीं लाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो जाना है, आप नाश्ता तो कर लो। कहते नहीं मैं नाश्ता नहीं करूंगा। फिर जब मार्केट खुली वहां से सामान उनका बिस्तरा वगैरह और खाने पीने की सामग्री ला करके दी। कहते मुझे अब शांति हुई है कि जो भगवान के बच्चे हैं इनके पास बिस्तरा भी नहीं है, खाने का सामान भी नहीं है, तो मुझे अब अच्छा लग रहा है कि रात को कम से कम सर्दी में ठिठुरेंगे तो नहीं और आराम से सोएंगे, तो उनके अंदर ना दान वृत्ति का संस्कार, उदारता ये कूट कूट करके भरी हुई थी। फिर उसको तो स्कूल में लगा दिया। दूसरा जो भाई था, पूछा तुम क्या करोगे, कहा कि ना हम ऐसे करेंगे, मेरे पास तो गरीब हूँ, मैं कुछ ले भी नहीं सकता। भाई साहब ने कहा अच्छा मैं तुमको ना एक बच्चों की रिक्शा होती है ना जिसमें बंद रिक्शा होती है, मैं वो लेकर के दूंगा और तुम वो चलाना। शनिवार को लेकर के दिया और भाई तुम रिक्शा चलाना, तो अगले शनिवार प्रदर्शनी थी तो देखा तो वो आया ही नहीं है। पूछा वो कहाँ गया है, तो ढूंढते रहे भी गरीब बच्चा है, पता नहीं दिल्ली में आया है, कोई एक्सीडेंट ना हो गया, सारा टाइम ढूंढते रहे। बाद में पता लगा तिलक नगर से यहाँ से खरीद करके दी थी, वहीं बेच के वो चला गया। तो उनको संतोष हुआ भाई कोई घटना नहीं घटी है, कोई बात नहीं बेच के चला गया, भला हो उसका, पर कम से कम वो सेफ तो है। तो इस प्रकार की उनके जीवन के अंदर जो निर्बल लोग होते थे, कमजोर लोग होते थे, उनको वो इस्टेब्लिश करते थे और उनकी मदद करते थे और उनको एक प्रकार से सहारा दे करके उसको उठाने की कोशिश करते थे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। और मैं बचपन से ही सबसे पहली स्टूडेंट मैं ही वहां, मेरे डैडी और हम, जब सब सेंटर खुला था तो पहले पहले स्टूडेंट हम ही थे। और जैसे बात बता रहे थे कि जहां पर ताला लगा था वो भी ताला मेरे डैडी ने जाके तोड़ा था। और तीसरा जो भाई साहब की बात बता रहे हैं, तो बचपन मतलब मैं उनके साथ 40 साल रही हूँ और वाकई में ही भाई साहब का जो जीवन था, मैं जिस तरीके से अपने मम्मी डैडी का इज्जत करती हूँ उससे कई गुना ज्यादा मैं भाई साहब की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मुझे कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी बहन है और मैं हूँ। वो हमेशा जो है ना, जो बाहर से लोग आते थे वो ये सोचते थे मुझे कि ये इनकी बेटी है, मतलब स्कूल वाले भी आते थे। और 37 इयर्स भाई साहब का जो स्कूल था वो मैंने ही चलाया, और भाई साहब को हमेशा मतलब लोग ये सोचते थे कि मैं उनकी रिलेटिव हूँ, उनको नहीं समझते थे। आज गली में भी सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, ज्यादातर लोग मतलब, जैसे जिनको पता है कि वो अनमैरिड थे वो तो अलग है, क्योंकि बाबा के टाइम के थे वो कुमार, लेकिन मैं बचपन से 12 साल की थी तब से उनके साथ ही रहे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और फखर है कि अगले कल्प में भी मैं ही होंगी। चलिए अब मैं एक अपनी खुद की रची हुई कविता सुना रही हूँ जो मैंने खुद लिखी है। हर बात नूंदी है ड्रामा में, हर बात नूंदी है ड्रामा में, हर चाल नूंदी है ड्रामा में, हर बात नूंदी है ड्रामा में, हर चाल नूंदी है ड्रामा में। मनुष्य सुख देता, मनुष्य सुख देता, भाई बना लो वीडियो, वायरल मत करना, ठीक है, मैं इसलिए वीडियो बनाने नहीं देती हूँ, नहीं फिर अच्छा नहीं लगता ना, बना लो लेकिन वायरल नहीं करना कहीं भी, ठीक है। हर बात नूंदी है ड्रामा में, हर चाल नूंदी है ड्रामा में, मनुष्य सुख देता फिर भी दुख क्यों पाता, मनुष्य सुख देता फिर भी दुख क्यों पाता, क्योंकि उसने भी दुख दिया होगा कभी ड्रामा में। हर बात नूंदी है ड्रामा में, हर चाल नूंदी है ड्रामा में। है हजारों का मालिक, है हजारों का मालिक, मिलता ना तसल्ली से पानी, है हजारों का मालिक, देखा बिस्तरों पे पड़े रहते हैं कहेंगे इस किसके पेट में पानी भी नहीं जा रहा, ग्लूकोज चढ़ रहा है, हाँ? है हजारों का मालिक, नहीं मिलता तसल्ली से पानी, क्योंकि नसीब में मिल्कियत नहीं है, क्योंकि नसीब में मिल्कियत नहीं है। कर विश्वास ड्रामा पर, कर विश्वास ड्रामा पर, पीता जा जहर दुखों का, क्योंकि इसको पीना भी कर्ज उतारना है, क्योंकि इसको पीना भी कर्ज उतारना है। नहीं उतारेगा अगर कर्ज, जैसे कहते हैं ना अभी मेरे साथ ये हिसाब किताब है, ये हिसाब किताब है, नहीं उतारेगा अगर कर्ज तो नहीं मिलेगा मर्ज, मर्ज समझते क्या, बीमारी, हाँ? नहीं उतारेगा कर्ज तो नहीं मिलेगा मर्ज, क्योंकि डॉक्टर शिव बाबा भी क्या करे, वो भी बंधा हुआ है ड्रामा में। हर बात नूंदी है ड्रामा में, हर चाल नूंदी है ड्रामा में। उतार सकते हो कर्ज केवल इस संगम पर, उतार सकते हो अपना कर्ज केवल इस संगम पर, लेकिन इसके लिए जीते जी मरने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए करना पड़ेगा पुरुषार्थ जीते जी मरने का। हर बात नूंदी है ड्रामा में, हर चाल नूंदी है ड्रामा में, हर बात नूंदी है ड्रामा में, हर चाल नूंदी है ड्रामा में। ठीक है, ये वाली कविता हमारा एक कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें सेकंड प्राइज लेके आए थे, मैं छोटी थी जब। चलिए कविता तो मैं बहुत लिखती हूँ, एक और सुन लो। प्यार, बस दीदी एक मिनट, प्यार करना है तो केवल एक ईश्वर से कर। ये भी मैंने खुद ही लिखी है, ये मैंने इसलिए लिखी थी कि मेरी बहन और मैं, हम दोनों ही ज्ञान में चलते थे, लेकिन मेरी बहन की शादी हो गई और वो भी 10 साल ज्ञान में चली थी और बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे होता है ना कि थोड़े से टेम्पटेशन में आ गए, घर वालों ने थोड़ा फोर्स किया, थोड़ा गांव का माहौल था तो उसको थोड़ा फोर्स किया, और फिर वो भी डॉक्टर था वो जिसके साथ शादी हुई, थोड़ी सी वो भी उसमें आ गई, तो इसलिए मैंने ये उसके ऊपर कविता लिखी थी। प्यार करना है तो केवल एक ईश्वर से करो, बहुत अच्छी कविता, सुन के जाना। प्यार करना है तो केवल एक ईश्वर से कर, वरना डूबेगा कभी एकदम, ऐसा डूबेगा कि निकलने को रास्ता ना मिलेगा। इसलिए प्यार करना है तो केवल एक ईश्वर से कर। फंसा अगर तू किसी को अपना समझकर, फंसा अगर तू किसी को अपना समझकर, सोच ले तुझे वह डाल देगा आग पर, सोच ले तुझे वह डाल देगा आग पर, सेक लेगा वह रोटी केवल एक तवा समझकर, फिर उस भट्टी से उतरने का वक्त ना मिलेगा। इसलिए प्यार करना है तो केवल एक ईश्वर से कर। दुनिया में फंसाते हैं झूठा आश्वासन देकर। आप देख के कहते हैं ना कि शादी करेंगे, उसको घर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये तो फलाना इतना कमाता है, सबके ऐसे ही होता है। जब किसी लड़के को देखने जाओ या लड़की को देखने जाओ तो यही कहते हैं ना, इतना बड़ा घर है, जैसे पता नहीं सेठ धन्ना सेठ यही हो, ऐसे ही बोलते हैं ना। दुनिया में फंसाते हैं झूठा आश्वासन देकर, डालेंगे चुग्गा, चुग्गा जानते हैं ना, इतने जेवर मिलेंगे, इतनी साड़ियां मिलेंगी, इसको बोलते हैं चुग्गा, हाँ चुग्गा दाना एक ही बात है। फंसाते हैं दुनिया में झूठा आश्वासन देकर, डालेंगे चुग्गा थोड़ा मुर्गी बनाकर। मेरी बहन का नाम दुर्गेश था, हम उसको घर में मुर्गी कहते थे। दुनिया में फंसाते हैं झूठा आश्वासन देकर, डालेंगे चुग्गा थोड़ा मुर्गी बनाकर, काट देंगे गला फिर खाएंगे तरकारी बनाकर, फिर उस भट्टी से उतरने का वक्त ना मिलेगा। इसलिए प्यार करना है तो केवल एक ईश्वर से कर। रखेगा अगर तू प्रभु से नीति तो दुनिया में सबसे अच्छी है ये नीति। रखेगा अगर तू प्रभु से प्रीति तो दुनिया में सबसे अच्छी है ये नीति। बचा लेगा तुझे वह हजारों कष्टों से अपनी हजारों भुजाएं देकर, अपनी हजारों भुजाएं देकर। ओम शांति। मेरे पास कविता बहुत सारी है, एक कल फिर नारी के ऊपर सुनाऊंगी, ठीक है, अगर यहाँ रही तो, अभी नहीं कल। ओम शांति। एक सेकंड, अभी दीदी जी का भी धन्यवाद, और हमारी सरिता बहन की मैं विशेषता सुनाती हूँ। आप जो है बहुत ही निरहंकारी हैं, और आप आज देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम किया, तो बहुत ही हसमुख भी है और निरहंकारी भी है, इसलिए एक बार जोरदार ताली। हमारी भट्टी में इन्होंने क्लास कराई, दीदी तो हमारे हैं ही, तो हमारा है, उनका भी धन्यवाद, और बहन क्योंकि बाहर से आके इन्होंने क्लास कराई, तो इनके लिए बहुत बहुत दिल से दुआएं। आप बहुत उन्नति करें, तरक्की करें, और बाबा का नाम रोशन करें, ये हमारी दिल से दुआएं। नहीं, दुआएं जो होती है ना वो सीधी अल्लाह के दरबार में जाती है ना, हम सब की तरफ से दुआएं, आप खूब प्रोग्रेस करें। ठीक है, ओम शांति जी।